पृष्ठ संख्या 95, अध्याय 6, नज़ीर, अकबराबादी और एक विशेष परंपरा। यहाँ तक पढ़ लेने के बाद इस संक्षिप्त इतिहास के पाठक ने इस बात का अनुभव अवश्य किया होगा कि यद्यपि उर्दू पर फारसी भाषा और उसी के साथ साथ ईरानी विचारों का प्रभाव पड़ा, किंतु उर्दू साहित्य में फिर भी स्थानीय रंग इतना गहरा रहा है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। यह समझना कुछ कठिन नहीं है कि उस विदेशी प्रभाव के बहुत से ऐतिहासिक कारण हैं जो समय की परिस्थितियों का परिणाम थे, उन पर किसी का अधिकार नहीं था। परंतु सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि इस अनेक रूपता में भी भारतीय सभ्यता एक प्रकार की एक रूपता से संबद्ध थी जो समय के साथ साथ और स्पष्ट होती जा रही है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जागीरदारी व्यवस्था का पतन और नई शक्तियों का उभरना नई समस्याएं पैदा कर रहा था और राजनीतिक परिवर्तन ने संस्कृति की बाढ़ को रोक दिया था, इसलिए उसके किसी अंग में प्रगति नहीं दिख पड़ती। केवल राजदरबार और राजधानी या इससे थोड़ा आगे बढ़कर कुछ प्रमुख नगर ही साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र बने हुए थे। ऐसा हर देश में और हर युग में होता है। भाषा इस प्रकार साहित्यिक होकर सीमित हो जाती है। यही नहीं बल्कि साहित्य में भी कुछ विशेष बातें स्वीकार कर ली जाती हैं और उन्हें तोड़ने की चेष्टा करने वाले को भी उसके समय में महत्व नहीं दिया जाता। उर्दू बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई, परंतु जब उसने साहित्य में एक स्थान ग्रहण कर लिया तो उसके नाप तौल के पैमाने बदल गए और केंद्रों में सीमित हो जाने के कारण उसका संबंध थोड़ा बहुत जनसाधारण से टूट गया। साहित्य पर तो अवश्य ही इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कई स्थानों पर संकेत दिया जा चुका है। उस समय सामाजिक और आर्थिक जीवन की मूलधाराएं दो थीं। एक ओर जनसमूह था जिनमें अधिकतर किसान और बिल्कुल नीचे की श्रेणी के धंधे करने वाले थे, दूसरी ओर बादशाह, जागीरदार, सेना के बड़े कर्मचारी और दरबार से संबंध रखने वाले लोग थे जिन्हें उच्च वर्ग कहा जाता है। मध्य वर्ग ठीक से पैदा नहीं हुआ था, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि जो लोग मध्यम वर्ग में हो सकते थे वह भी मानसिक रूप से सामंती जीवन से प्रभावित थे। इसलिए साहित्य में भी दो रंग हो जाते हैं जो कभी किसी बड़े लेखक की रचनाओं में व्यापक रूप से मिलते दिख पड़ते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समस्त लेखक केवल उच्च वर्ग के लोगों की भावनाओं का चित्रण करते थे, बल्कि सत्य यह है कि उनकी चेतना सामंतवादी युग के विचारों, नैतिक सिद्धांतों, पृष्ठ संख्या 96, शिक्षा संबंधी नियमों से बनती थी और वह उन्हीं परंपराओं का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। फिर भी जहाँ कहीं मानव की भलाई और दलित लोगों के प्रति न्याय का प्रश्न उठता था, एक कवि सारे बंधनों को तोड़ देते थे। वह धर्म, राजनीतिक परंपराओं और आर्थिक भेदभावों का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हीं की सहायता से मनुष्य को जातियों और वर्गों में बांटा जाता था। ये बातें कुछ तो तशव्वुफ की उदार और व्यापक दृष्टि का परिणाम कही जा सकती हैं और कुछ व्यक्ति और समाज के बीच नैतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा में पैदा हुई। इस परंपरा को चलाने में सभी महान कवियों के नाम लिए जा सकते हैं, मुहम्मद कुली कुतुब शाह, वली सिराज, मीर, दर्द, आतिश, गालिब और अन्य कवि इसी परंपरा का पालन करते थे। उच्च काव्य साहित्य की यह विशेषता सभी भाषाओं में पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य के विरुद्ध अन्याय का अनुभव सहृदय कवियों को पहले होता है और वह एक विशेष वर्ग विभाजित समाज में रहते हुए भी साधारण जीवों के प्रति उदार भाव प्रकट करने का साहस रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उर्दू में अच्छा लोक साहित्य जन्म नहीं ले सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उर्दू भाषा का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति एक विशेष रूप धारण कर चुकी थी, कई भाषाओं के साहित्य प्रचलित थे और जब उर्दू एक नई भाषा के रूप में उभरी तो उनके सम्मुख साहित्य के अच्छे नमूने मौजूद थे। उसने कहीं की राह ग्रहण कर ली उसने उन्हीं की राह ग्रहण कर ली जब तक वह बोलचाल के काम में लाई जाती रही। उसने जनता के विचारों और व्यवहारों के आधार पर प्रगति की और बहुत से मुहावरे जो जीवन की साधारण समस्याओं से संबंध रखते थे प्रचलित हो गए। प्रारंभिक अवस्था में उर्दू साहित्य में सादगी थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया साहित्यिक भाषा में फारसी अरबी शब्दों से मदद ली जाने लगी और अधिकतर उन विचारों की चर्चा होने लगी जो भारतीय जनमानस के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखते थे। ग्राम जीवन और नगर जीवन में अंतर पैदा हो चुका था और नगरों में भी लोग अपनी ही श्रेणी के लोगों से मिलते थे और इस बात को मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक समझते थे। इस प्रकार उर्दू काव्य लोक साहित्य से दूर होता चला गया। उर्दू काव्य का अध्ययन करते समय एक और दिशा में ध्यान देना उपयुक्त होगा। उर्दू के अधिकतर कवि न केवल फारसी भाषा और उसके काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे, वरन उनमें से बहुत से ऐसे थे जो फारसी को उर्दू से श्रेष्ठ समझते थे और उसी भाषा में लिखने को सभ्यता का चिन्ह जानते थे। उनमें से कुछ हिंदी से भी परिचित थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह हिंदी काव्य शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए वह अपनी काव्य रचना में फारसी काव्य शास्त्र और काव्य आलोचना से प्रेरणा लेते थे। फारसी काव्य आलोचना पर अरस्तु का गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी के कारण फारसी आलोचक भी इस सिद्धांत को मानने लगे कि काव्य तथा इतिहास में प्रस्तुत पृष्ठ संख्या 97 होने वाली घटनाओं में अंतर होना चाहिए। इतिहास में विशेष घटनाओं का बयान होगा और कविता में सार्वजनिक और साधारण घटनाओं का। यही कारण है कि गजल में जो उर्दू और फारसी काव्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, ऐसे भावों और अनुभवों का वर्णन होता है जो एक ही प्रकार की बहुत सी घटनाओं पर आधारित हो सकती है। उर्दू काव्य की इस विशेषता को ध्यान में रखने से कई बातों के समझने में सहायता मिलेगी और यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि विशेष घटनाओं और विषयों पर अधिक कविताएं क्यों नहीं लिखी गईं। काव्य साहित्य को अधिक से अधिक विश्वव्यापी और अलौकिक प्रकट करने के लिए उन्होंने यह राह पकड़ी थी। इसके सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझना कुछ ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत से कवि पूरी तरह जनता के साधारण जीवन से परिचित भी न थे, जिनको इसका थोड़ा बहुत अनुभव था और जिस प्रकार अनुभव था उसका उल्लेख उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अवश्य किया है। ऐसे ही एक कवि नज़ीर अकबरावादी हैं जो अपना समकक्षी नहीं रखते। नज़ीर का जन्म दिल्ली में 1740 ईस्वी में हुआ, परंतु उनका समस्त जीवन आगरा अकबराबाद में ही बीता। वही आगरा जो मुगल सम्राट अकबर की राजधानी रह चुका था और जिसके चारों ओर कृष्ण भक्ति का वह वैष्णव आंदोलन फैला हुआ था जिसने सूरदास और मीराबाई के गीतों और भजनों को जन्म दिया था। जहाँ विशाल किला और ताजमहल खड़े किए गए थे, जहाँ की वायु में राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीत गूंज रहे थे, जहाँ के निकट ही मथुरा और वृंदावन के मेलों और त्योहारों में सम्मिलित होकर जनता के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। इन परंपराओं के साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि नई आर्थिक स्थिति में भारत दीन होता जा रहा था। व्यापारी और धंधे करने वाले बेकार हो रहे थे, देश की संपत्ति समुद्र पार जा रही थी और ग्रामीण जीवन का वह ढांचा टूट फूट रहा था जो शताब्दियों से देश के जीवन को बांधे हुए था। नज़ीर की आयु इसी आगरे में कटी, उसके कण कण से उन्हें प्रेम था। वह स्वयं कहते हैं, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। इसलिए उनकी कविता में वही जीवन सांस लेता जान पड़ता है जो आगरे और उसके चारों ओर था। नज़ीर का नाम वली मोहम्मद था। रीति के अनुसार उन्होंने फारसी अरबी पढ़ी थी, लेकिन उन्हें बड़ा विद्वान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जीवन का बड़ा भाग लड़कों को पढ़ाने में बिताया। अंत में लाला बिलास राय के लड़कों को 17 रुपये पृष्ठ संख्या 98 मासिक पर फांसी पढ़ाने लगे। एक समय का भोजन उन्हीं के यहाँ करते थे। युवावस्था में जीवन के आमोद प्रमोद विलास और हास्य सब में भाग लिया। खेलकूद, पतंगबाजी, तैराकी, व्यायाम, कुश्ती, कबूतरबाजी सभी मनोरंजनों से जी बहलाते रहे थे। मुसलमानों और हिंदुओं के त्योहारों, विशेषकर होली, दिवाली, राखी कृष्ण जन्मोत्सव में अवश्य भाग लेते थे, आगरा के बाहर नहीं जाते थे, मगर मथुरा और वृंदावन के मेलों में जाए बिना ना रहते। कहा जाता है कि उन्हें अवध और भरतपुर के राजदरबार से निमंत्रण मिले, परंतु उन्होंने आगरे को छोड़ना स्वीकार नहीं किया और लाभ अथवा शांति के जीवन को ठुकरा दिया। देखने में तो यह एक साधारण सी बात है, लेकिन वास्तव में यह जनजीवन से प्रेम की वह रुचि है जो दरबार से बंध जाने के बाद समाप्त हो जाती। नजीर ने एक लंबी आयु पाई, उसमें उन्होंने सुख भी भोगे और जीवन के कष्ट भी सहे। उसमें वह प्रेम की पेंगों में भी झूले और भक्तों के ऐसा जीवन भी बिताया। आगरे के बड़े बड़े लोग उनका आदर सम्मान करते थे और जनता के शोषित वर्गों से उनकी अत्यंत आत्मीयता थी। जनता से उनका ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि उनके यहाँ ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, बड़े छोटे का भेदभाव मिट गया था। उनके स्वभाव में ऐसी सरलता और व्यवहार में ऐसी स्वच्छंदता पाई जाती थी कि सभी उनके मित्र थे। भिखारी और खोमचे वाले भी उनसे अपने लिए कविताएं लिखा लेते थे। आगरे के मुहल्ला ताजगंज में रहते थे, वहीं 1830 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और घर ही के अंदर उनकी समाधि बनी। नजीर ऐसे सत्पुरुष थे कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें बड़ा सूफी फकीर समझा और बहुत दिनों तक उनकी समाधि पर हर वर्ष मेला लगता रहा। उनके पुत्र खलीफा गुलजार अली असीर भी कवि थे। उनके कई शिष्य भी थे, जिनमें वातिन नामक एक शिष्य ने कवियों का एक तज़किरा भी लिखा है, जिसमें नज़ीर का उल्लेख विशेष प्रकार से किया गया है। नज़ीर के दो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक में उनकी कविताएं हैं और उसका नाम कुलियाते नज़ीर है। यह संग्रह बार बार छप चुका है, हिंदी में भी उसके कुछ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरा संग्रह अभी कुछ वर्ष पहले प्राप्त हुआ है, उसमें केवल गजलें हैं, उसे भी प्रकाशित कर दिया गया है। अनुमान है कि अभी उनकी बहुत सी कविताएं लोगों के पास इधर उधर हैं, मगर विश्वस्त रूप से इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है। दूसरा संग्रह मिलने से यह तो हुआ कि हम नज़ीर की गज़लों के बारे में भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज भी उन्हें भारतीय साहित्य में जो गौरव प्राप्त है वह पहले संग्रह के कारण है, क्योंकि उसमें भारतीय जीवन अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के संग जीवित हो उठा है। इस संग्रह का एक भाग कृष्ण जी, महादेव जी, भैरव जी इत्यादि पर लिखी हुई कविताओं से भरा हुआ है। नज़ीर से पूर्व अधिकतर कवि साधारण विषयों पर लिखने और जनता के बीच का चित्रण करने में संकोच करते थे, परंतु नज़ीर ने उच्च वर्ग के पृष्ठ संख्या 99 विचारों में एक ऐसा चोर दरवाजा बना दिया जिसमें से होकर जनता का जुलूस साहित्य भवन में घुस आया। कविता की इस महान परंपरा के साथ नज़ीर अकबराबादी का नाम सदैव जीवित रहेगा। वास्तव में तो यह वही परंपरा थी जिसे अमीर खुसरो ने जन्म दिया था, परंतु बीच में जीवन से उसका वह पहला सा घनिष्ठ संबंध नहीं रह गया था। नज़ीर ने उसे प्रबल, व्यापक और लोकप्रिय बनाया। अमीर खुसरो के पश्चात भक्त कवियों ने, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह ने, दिल्ली के फाइज ने उसे विनाश से बचाया था। नज़ीर ने उसे आकाश तक ऊंचा उठा दिया। एक हिंदी लेखक ने नज़ीर की उदार हृदयता और उर्दू साहित्य की एक नई धारा निकालने की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इन्वर्टेड कामा उस शुष्क और उजाड़ संगम पर आकर नज़ीर ने अजान भी दी और शंख भी फूका, तस्बीह भी ली और जनेऊ भी पहना। मुहर्रम में रोए तो होली में भड़ुए भी बने, रमजान में रोजे रखे और सलूनों पर राखी बांधने को मचल पड़े, सब बरात पर महताबियाँ छोड़ी तो दिवाली पर दीप सजाए। नबी रसूल, वली पीर पैगंबर के लिए जी भर कर लिखा तो कृष्ण, महादेव, नरसी, भैरों और नानक पर भी श्रद्धांजलि चढ़ाई। गुलो बुलबुल पर कहा तो आम और कोयल को पहले याद रखा, पर्दे के साथ बसंती साड़ी भी याद रही, और तो और गर्मी, बरसात और सर्दी पर भी लिखा। बच्चों के लिए रीछ का बच्चा, कौआ और हिरन, गिलहरी का बच्चा, तरबूज, पतंगबाजी, बुलबुलों की लड़ाई, ककड़ी, तैराकी, तिल के लड्डू पर लिखने बैठे तो बच्चे बन गए। हर एक बालक गली कूचे में गाता फिर रहा है, जवानों और बुढ़ों को नसीहत देने बैठे तो लोग वजद में आ गए। मानो कुरान, हदीस, वेद, गीता, उपनिषद, पुराण सब घोल कर पी जाने वाला कोई सिद्ध पुरुष बोल रहा है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि नज़ीर के यहाँ उर्दू काव्य की वह परंपराएं बिल्कुल नहीं हैं जिन्हें सामंतवादी सभ्यता और ईरानी प्रभावों ने जन्म दिया था, और ना यही कहना ठीक होगा कि आधुनिक युग की वास्तविकता और राष्ट्रीय चेतना का उद्भव नज़ीर की काव्य रचना में देखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें संभव नहीं थी। परंतु उनकी कविता में जो सच्चाई, जो देशभक्ति, साधारण जनजीवन का जो ज्ञान, मानव का जो प्रेम, जो सहृदयता और सहजता मिलती है, वह इससे पूर्व किसी कवि के यहाँ नहीं मिलती थी। उनकी कविताओं का अध्ययन करते ही ऐसा ज्ञात होता है कि हम पैर जमाए पृथ्वी पर खड़े हैं, हमारे चारों ओर हर प्रकार के मनुष्य बेखट के चल फिर रहे हैं, अपने देश के जाड़े, गर्मी, बरसात आते हैं, और हम इन जानी बूझी ऋतुओं का आनंद उठाने लगते हैं। भिन्न भिन्न दलों और जातियों के लोग, अन्य धर्मों और वर्गों से संबंध रखने वाले जानवर, पंछी सब प्रस्तुत हैं, और सारा वातावरण वह है जिसमें हम रहते हैं। इन छोटे छोटे विषयों पर जीवित कविताएं, पृष्ठ संख्या 100, लिखना किसी साधारण या छोटे कवि के बस की बात नहीं है। नज़ीर के अनुभव का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि वह भारतीय जीवन के बारे में सभी कुछ जानते हुए जान पड़ते हैं। यह ठीक है कि नज़ीर के पास कोई गहरी दार्शनिक दृष्टि नहीं है, परंतु वह जीवन की समस्याओं में इस प्रकार से प्रवेश किए हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। वह दरिद्रता के कारण जीवन और धर्म के संबंध, वर्गों की विभिन्नता, मानवता की आवश्यकताएं सब कुछ जानते हैं, और यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनकी सीधी सादी कविताओं में ये सारी बातें कैसे समा गई हैं। जब वह तैराकी, बरसात, आंधी, अंधेरी रात, आटा दाल इत्यादि पर लिखते हैं, तो यह अनुमान नहीं होता कि ये बातें केवल उनके मुख से निकल रही हैं, बल्कि इनको उन्होंने हर स्थान और हर दृष्टि से देखा है। उन्होंने जीवन को जैसा देखा और पाया था, वैसा ही उसका चित्रण कर दिया। परंतु प्रत्येक स्थान पर उनका दृष्टिकोण जनता का दृष्टिकोण रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह देश की आर्थिक समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते थे, वर्गों के आंतरिक संघर्ष का कोई विशेष ज्ञान नहीं रखते थे, परंतु एक सच्चे मानव प्रेमी होने के नाते वह जनता के दुख सुख का अनुमान लगा लेते थे, क्योंकि उन्हीं में से एक थे। नज़ीर की कविताओं का अध्ययन करते समय उनकी भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा आगरा की बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। उसमें खड़ी बोली और ब्रज का मेल है। एक आध कविताओं से यह भी पता चलता है कि वह अरबी फारसी के अतिरिक्त ब्रज, अवधी और पंजाबी भी जानते थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सारे महान कवियों की भांति भाषा का प्रयोग नज़ीर के व्यक्तित्व का भी पता देता है। कला की दृष्टि से उनकी काव्य रचना में त्रुटियां हैं, विचार की दृष्टि से नाना प्रकार की जटिल विषमताएं हैं, पर उनकी सच्चाई और मानव प्रेम सब पर पर्दा डाल देते हैं, और उनकी कविताएं पढ़ते हुए बंद और रुंधे हुए स्थान से निकलकर हम खुली हुई वायु में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कविताओं के अंश दिए जाते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां। पृष्ठ संख्या 101, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, या आदमी पे जान को आरे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। आदमी नामा से बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धुमे मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा, जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्जियां नहा रहे हैं, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। मारे हैं मौज डाबर, दरिया उमड़ रहे हैं, मोरों पपी है कोयल, क्या क्या उमड़ रहे हैं, झड़कर रही हैं चिड़ियां, नाले उमड़ रहे हैं, बरसे हैं मेह, झड़ाझड़ बादल घुमड़ रहे हैं, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। बरसात की बहार से बेरोजगारी ने ये दिखलाई है मुफलिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवारों दर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह से फिर आई है मुफलिसी, पानी का टूट जावे है जूं एक बार बंद, अब आगरे में जितने हैं सब लोग हैं तबाह, आता नजर किसी का नहीं एकदम निवाह, मांगो अजीजों ऐसे बुरे वक्त से पनाह, वो लोग एक कौड़ी के मोहताज अब हैं आह, कस्बों हुनर के याद हैं जिनको हजार बंद। पृष्ठ संख्या 102। सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सो खाते हैं अब उधार, बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों पर अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद। किस्मत से चार पैसे जिन्हें हाथ आते हैं, अलबत्ता रूखी सूखी रोटी पकाते हैं, जो खाली आते हैं वो कर्ज लेके जाते हैं, यूं भी न पाया कुछ तो फकत गम को खाते हैं, सोते हैं कर किवाड़ को एक आह मार बंद। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, किस किस के दुख को रोइए और किस की कहिए बात, रोजी के अब दरख्त का मिलता नहीं है पात, ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद, शहरे आशोब। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख ओ जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान ओ एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उसत खान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी मुफलिसी से, है रीति जन्म की यों होती, जिस घर में बाला होता है उस मंडल में हर मन भीतर सुख चैन दुबाला होता है, सब बात व्यथा की भूले हैं जब भोला भाला होता है, आनंद मंडली बाजत है नित भवन उजाला होता है। पृष्ठ संख्या 103। यूं नेक नक्षत्र लेते हैं इस दुनिया में संसार जन्म, पर उनके और ही लक्षण हैं जब लेते हैं अवतार जन्म, शुभ साअत से यूं दुनिया में अवतार गर्भ में आते हैं, जो नारद मुनि हैं ध्यान भली सब उसका भेद बताते हैं, वो नीक मुहूर्त से जिस दम इस सृष्टि में जन्मे जाते हैं, जो लीला रचनी होती है और रूप ये दिखला जाते हैं, यूं देखने में और कहने में वो रूप तो बाले होते हैं, पर बाले ही पन में उनके उपकार निराले होते हैं। जन्म कन्हैया जी। यहाँ नजीर की इससे अधिक कविताएं देना संभव नहीं है, परंतु इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि नजीर की काव्य रचना का उल्लेख अलग से एक अध्याय में इसलिए किया गया है कि थोड़ा बहुत रीतिगत का अनुसरण करने के बाद भी नजीर ने अपनी शैली सबसे अलग बनाई। वह न दिल्ली के केंद्र में रखे जा सकते हैं और न लखनऊ के केंद्र में, वह स्वयं नई परिपाटियों के जन्मदाता हैं और किसी बनाए पथ पर चलने के बदले अपना पथ आप बनाने वाले हैं। यह विशेषता उन्हें इसलिए प्राप्त हुई थी कि उन्होंने जीवन के समझने में किसी दर्शन या परंपरा का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसमें स्वयं डूब गए और वही लिखा जो किसी और ने नहीं लिखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके समय में आलोचकों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया और वह शैली प्रचलित ना हो सकी जिसे नजीर ने अपनाया था, परंतु आज उनका प्रभाव स्वीकार किया जा रहा है। उर्दू के महान कवि जोश मलिहाबादी और प्रसिद्ध कवि इहसान दानिश केवल उनके बड़प्पन को ही नहीं मानते, बल्कि उनसे प्रभावित भी हैं। आज के आलोचक उन्हें काव्य मर्यादा की उत्तम श्रेणी का पोषक मानते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक दृष्टि से कविता और जीवन में जिस संबंध की खोज की जा रही है उसके सुंदर उदाहरण नज़ीर के यहाँ मिलते हैं, और वह परंपरा दिव्य होकर पथ प्रदर्शन करती है जिस पर चले बिना साहित्य एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होकर रह जाएगा।